ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
हमारा ये गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहां से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं।
ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस बीच इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष सातवें दिन भी जारी है। ईरान की मिसाइलें ने मध्य और दक्षिणी इसराइल में कई स्थानों पर गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जबकि इसराइल बलों ने इराक के अराक में परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। दक्षिणी इसराइल के एक अस्पताल और तेल अवीव के पास दो शहरों में ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा बीरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लेने की कसम खाई है। इसराइल के इस सबसे बड़े अस्पताल पर हुए हमले में कई मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले क्रोएशिया के जागरेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत की और कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता।
ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है।
प्रधानमंत्री कल से बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान बिहार और उड़ीसा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस ऑपरेटरों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान सुरक्षा पहलुओं, यात्री सुविधाओं और एयरलाइन के निष्पादन की समीक्षा की। ये बैठक दुर्घटना के बाद की जांच, मौसम में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव के कारण कुछ हवाई क्षेत्रों को बंद करने आदि के कारणों उड़ानों के पुनर्निर्धारण के मद्देनजर आयोजित की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। श्री प्रधान आज अजमेर के निकट राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दो दशकों में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना देश के नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
देश ने एक सामूहिक मन बना लिया है, हमें आने वाले दो दशकों के अंदर दुनिया की एक ताकतवर देश बननी है। और कोई भी देश आगे जाता है उस युवा पीढ़ी की जज्बा पे जाता है, उस युवा पीढ़ी की बुद्धिमत्ता से जाता है, उस युवा पीढ़ी की मेहनत से जाता है। भारत एक नौजवानों की देश है, दुनिया की परिस्थिति बदल रहा है, दुनिया में कहा जाता है न्यू ऑर्डर आ रहा है, भारत अपने आप में निखर के उभर रहा है।
चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। गुजरात की विसावदर और कड़ी सीट, केरल की नीलांबुर, पंजाब की लुधियाना तथा पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।